सुनहरी बातें आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
ऊँटारी बाता कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊँट पालक भैया ने भोमजी भाई और
गौरा बेन रा गणा अनगणा
राम राम सा राम राम गौरा बेन
राम राम भोमजी भाई राम राम
राम राम
भोमजी भाई।
हाँ।
लोग केवे है के बातरलिया घर उजड़े, पर मैं तो कहूँ की बातरलिया घर होए ज्ञानी सुज्ञानी मिले बात बात अर बात।
अरे गौरा बहन ऊँटारी बातर माए ज्ञानी पावना री बात सु तो आपने ऊँट पालकार घर तो बस यही है। अरे केवनी बात आए की इन बात सु तो देखो आने फायदो ही फायदो है। देखो मने तो हुयो है
हुयो है नी। हाँ। थाने नहीं सगले ऊँट पालका ने फायदो हुयो है। और भोमजी भाई मैं तो ऊँटारी बात माए आऊ नी, जने मने तो जूनो जमानो याद आ जावे जने गरीब आखड़ रे माए ने ऊँट होता समृद्धि रा प्रतीक।
सोला ना खरी गई गौरा बहन बात। अरे आज ना जी का फटफटिया है मोटर गाड़ी है अरे हवाजाज है ये सगला नो काम कौन करतो आपड़ो ऊंट जनी तो बिने रेगिस्तानो जहाज केवता
रेगिस्तानो जहाज केवता। और भोमजी भाई देखो ए बाता करू नी जने मन तो देखो जूनो जमानो याद आ जावे। और देखो सुनाऊ थाने दुओ जिन रे माने डोलो मारू सु मिलन सारू तेज गति रो ऊंट मांगे रे बारी सु
रे बारी सु। हां हां
पलाण ये पवन नहीं मिलाई घड़िए जोइन जाए रई बारी ढोलो कही सोमो आवई जाए।
वाह वाह सा बहुत ही बढ़िया दो सुना है।
देखो बिने तो तेज दौड़न वालो जिको हवारे गति सु चले नहीं वो ऊंट चईस तो हो।
अरे वो ऊंट रेबारी सु
मांगियो।
जूने जमाने रे ऊंट री मेहता ने कायम रखन सारू है ऊँटारी बाता। और पूरो प्रयास करे है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र वैज्ञानिक और इनी कड़ी में आज पावना बाता करेला उष्ट उत्पादन और संरक्षण में बेहतर चारा का विकास एवं घास उत्पादन रो महत्व। और आज जानकारी देन सारू पधारिया है डॉक्टर एनडी यादव, आप अध्यक्ष है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बीकानेर में।
तो सगला पहला यहाँ स्वागत करो राम राम कर ला।
बिल्कुल सा डॉक्टर साहब आप चौपाल में घनो घनो स्वागत है और आपने में करा
राम राम सा
राम राम भोमजी भाई गौरा बहन।
डॉक्टर साहब देखो आज आप अठे पधारिया हो जने और नवी जानकारी आपने मिलेला क्योंकि ऊंटारो पालन करा। हाँ तो वीर सारू देखो चारागाह और घासरी बात नहीं करा नी जने सगला मोटी बात तो आई है आ छूट जावे जने भोमजी भाई की पार पड़े कोनी पड़े नी। तो देखो सगला पहला तो डॉक्टर साहब ने आज पूछ लू की आज भी देखो नवी पीढ़ी है आपा कहवा हाँ की शहरीकरण है बढ़ाई गुणाई है इनके कारण ऊँट पालन व्यवसाय से दूर होती जा रही है। पर इनरे लारे एक कारण और बताई जे है की चारागाह की कमी होने से भी ऊँट पालन महंगो है। तो कई बात सही है डॉक्टर साहब
गौरावन भाई बहुत बहुत सही है। आज के युग में आज के जमाने में पश्चिमी राजस्थान में तो एकदम सही है क्योंकि जो भी चारागाह का क्षेत्र है वो किसान भाई पानी के आने से नहर आने से लोग खेती करना शुरू कर दिए हैं तो पशुओं को चरने के लिए जगह नहीं है और चारागाह कम होते जा रहे हैं और कम होने के कारण घास कम मिलती है जिससे कि ऊँट पालन महंगा हो रहा है।
गौरावन चारागाह की बात तो आप सुन ही हैं अपन एक शब्द है कि बेहतर चारागाह तो अपो डॉक्टर साहब से वही पूछना कि बेहतर चारागाह विकास केवे किन्ने और चारागाह विकास और घास उत्पादन और ऊंट उत्पादन और संरक्षण में महत्व कहीं है।
मुंजी भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेहतर चारागाह वो चारागाह होता है जहां से पशुओं को अच्छा पौष्टिक चारा मिल सके। अब आप पूछेंगे कि पशु तो कई तरह के होते हैं, कुछ झाड़ी खाने वाले झाड़ी की पत्ती खाते हैं, कुछ सतह पर जो घास होती है उसको खाते हैं। तो बेहतर चारागाह मैं आपको बताना चाहूं कि सबसे बढ़िया जो चारागाह होता है उसमें तीनों चीजें होती हैं। सतही जमीन पर घासें होती हैं जिसको गाय के लिए या ऊंट भी खाता है और कुछ कांटे वाले पौधे लगाते हैं जिससे कि जो है चारा ऊंट खाता है और बकरियां खाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेहतर चारागाह वही है जहां से पूरा पौष्टिक आहार चाहे वो ऊंट हो या बकरी हो या गाय हो सबको मिल सके, इसको ही बेहतर चारागाह कहते हैं।
और डॉक्टर साहब देखो चारागाह की बात करा आप बार कहो वनस्पति है घास है तो अपने ऊंट पालक है या जिको भी चारागाह लगावे है उनने किसी किसी वनस्पति रोपण करना चाहिए या किसी घास लगावनी चाहिए जिनसे कम जगह रे मायने वाने बारो मास चारो मिल सके।
चारागाह विकास में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात है चारा, जहां से कि हमें चारा मिल सके पशुपालकों को चारा मिल सके वो है घासें। और ये पश्चिमी राजस्थान के लिए वरदान है कि यहाँ पर बहुत सी बहुवर्षीय घासें हैं जैसे सेवन है धामन है मुरैट है जो कि एक बार लगाने के बाद 10 साल तक चलती रहती हैं और वर्षा के पानी से ही उनको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा के पानी से ही वो चारागाह में पनपती रहती। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की गायें या यहाँ के जानवर यहाँ के ऊँट और बकरी वो इसको बड़े चाव से खाते हैं, इसका कुत्र बना के भी लोग देते हैं। दूसरा, ऊंट की बात आती है, ऊंट सतही वनस्पति को कम पसंद करता है, ये पेड़ों के चारे को, पत्तियों को पसंद करता है। तो हमें चारा वृक्षों को लगाने की जरूरत है, और उसमें हमारा टॉटलिस है जिसको कि हम किकर कहते हैं, बबुल कहते हैं, उसकी पत्तियों को ऊंट बहुत पसंद करता है। झरवेरी है, उसकी पत्तियों को भी बहुत पसंद करता है। और इसी तरह चारा के अनेक पेड़ हैं जिसको कि हम बहुत कम पानी से इस पश्चिमी राजस्थान में लगा सकते। तीसरी सबसे बड़ी बात बताऊं कि झरवेरी, जिसकी पत्तियों को हम लोग काट करके इकट्ठा करके गायों को भी खिलाते हैं, और यह चारागाह में लगा हुआ है तो बकरी और भेड़े भी इस खाने में बहुत अच्छा पसंद करती है। तो इस तरह से तीनों तरह की वनस्पतियों को हमें अपने चारागाह में लगाना चाहिए, तभी बेहतर प्रबंधन हो सकता है।
अब डॉक्टर साहब, हमारे ऊंट पालक बहन जानना चाहे कि बेहतर चारागाह से ऊंट उत्पादन और संरक्षण क्या हो सके।
भूमजी भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे चारागाह में अच्छी वनस्पतियां हैं, अच्छे पेड़ हैं, तो हमें चारा अधिक मात्रा में मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी का चारा मिलेगा, उसका गुणवत्ता अच्छा होगा, तो हम अपने ऊंटों को अच्छी तरह से परवरिश कर सकते। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें यदि हमारे अच्छे गुणवत्ता के पेड़ लगे हुए हैं और सतही वनस्पति में अच्छी वनस्पतियां लगी हुई हैं, जैसे सेवन और धामन, और दो और वनस्पतियों का नाम हम आपको बताना चाहते हैं। पहला है लाना, जो कि लवणीय क्षेत्र में होता है, खाजू वाला है, पुगल है, इस क्षेत्र में बहुत पाया जाता है, जिसको कोई ऊंट बहुत पसंद करता है। वो खाने में नमकीन होता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो वो लाने के पत्तियों को भी खा करके अपना जीवन यापन करता है। दूसरा, आपने देखा होगा यहाँ फोक, फोक चारागाह क्षेत्र के लिए भी वरदान है। फोक के साथ दूसरी घास है, वो वनस्पतियां अपने आप उगती रहती हैं और बहुत अच्छी ढंग से उगती हैं। तो फोक की पत्ती जो गिरती है उसको हम लासो बोलते हैं, और जब बहुत ही ज्यादा अकाल हो या कोई बरसात ना हो तो लासो को ऊंट के लिए बहुत अच्छे ढंग से खिलाया जा सकता है, और इसमें प्रोटीन होता है जो कि ऊंट पालन में सहायक होता है।
और डॉक्टर साहब देखो, आप बात कर रहे हैं बेहतर चारागाह री, तो अब आपने मैं पूछूं कि ऊंट पालन स्वरूप बेहतर चारागाह रो विकास किन बात करे ऊंट पालक जिनसु के उन्हें फायदो हुए।
गौरवन, चारागाह की कमी हो जा रही है। जब क्षेत्र में कमी हो रही है तो हमें कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन लेना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि किसान भाई ये समझते हैं कि चारा या घास लगाने से घास होती नहीं है, ये तो अपने आप उगती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम चराई ज्यादा करते हैं तो घास खत्म हो जाती है। उस चारागाह को पुनर्जीवन देने के लिए आपको घास और पेड़ तो लगाने ही पड़ेंगे, तभी चारागाह का समुचित विकास हो सकता। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि घास लगाएं कैसे। घास एक जंगली पौधा है, और जो जंगली पौधा होता है उसको पालतू बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसको लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। काजरी का जो हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में, इन्होंने घास लगाने की तकनीकों का विकास किया है, जिसको अपना करके आप चारागाह क्षेत्र के लंबे चौड़े चारागाह क्षेत्र को थोड़े समय में विकसित कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि घास का बीज सबसे उपयोगी होना चाहिए, जिसका जमाव सबसे ज्यादा, और वो घास का बीज जो इकट्ठा होता है हमारे अनुसंधान केंद्र से भी मिलता है, हमारा जो है जोधपुर में संस्थान है वहां से भी मिलता है, आप ले सकते हैं। और किसान भाइयों को हम बताना चाहें कि अगर उनके खेत में सेवन या धामन घास लगी है तो उसको भी बीज इकट्ठा करके आप बुआई के लिए प्रयोग में कर सकते हैं। अब कैसे करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां भी जिस चारागाह क्षेत्र में आपको बुआई करना है, सबसे पहले एक जुताई जरूर करवा दी।
अच्छा,
उस जुताई करने से मुंजी भाई क्या होता है कि जुताई करने से जो अवांछित वनस्पतियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जो घास के साथ प्रतियोगिता कर दी है वो नष्ट हो जाती है, जिससे घास उगती है। अब जहां पर हमें बुआई करना है उसमें घास को रखिए, और उसी रेत में, और जो नम रेत है उसमें फावड़े से मिलाते जाइए, और उस घास को तब तक मिलाइए जब तक कि एक मुट्ठी मिट्टी में 7 से 8 बीज ना आ जाए। मिट्टी खोल के देखिए, मिट्टी एक मुट्ठी उठाइए और उसको खोलिए, उसमें 7-8 बीज आए, समझ लो कि ये तैयार हो गया बुआई के लिए। अब सभी किसान भाई जानते हैं ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर रहता है, कल्टीवेटर के ऊपर बोरियों में उस मिट्टी मिले बीज को भर दीजिए, और उल्टे मुंह बैठ करके खुलते हुए कुंडों में हाथों से उस मिट्टी के बीज सहित मिट्टी को डालते चले जाइए। और बहुत आवश्यक है तो एक छोटी सी पाइप हो या छोटी सी लकड़ी हो जो कि उसके पीछे बांध दीजिए, जिससे थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी कुंडों में गिर जाए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि चारागाह क्षेत्र में बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं जो उस बीज को उठा ले जाते हैं, तो उसके लिए मिट्टी मिलाते समय एक मुट्ठी गमेक्सिन पाउडर जरूर मिला दीजिए, या कोई गंध वाला पाउडर मिला दीजिए, जिससे कि जो है कीड़े मकोड़े उसको न ले जा सके। तो इस तरह से आप पूरे क्षेत्र में घास की बिजाई कर दीजिए, और 8 से 10 दिनों में आपको घास का बीज जम जाएगा। एक सावधानी रखना बहुत आवश्यक है, वो सावधानी ये है कि 1 साल तक प्रथम वर्ष उस क्षेत्र में पशुओं को ना बढ़ने दें, और किसी तरह की निकाई गुड़ाई और जुताई ना करें, जिससे घास को एक वर्ष पैदा होने के लिए समय मिल जाए और अगले वर्ष से आप आराम से चराई करवा सकें। अब दूसरी बात हम बता देते हैं कि पेड़ों को कैसे लगाया जाए। चारागाह क्षेत्र में पेड़ लगाने के बाद घास मत लगाइए, सबसे पहले घास को लगा दीजिए। घास लगाने के बाद जो चिन्हित क्षेत्र हैं जहां पर गड्ढे बना करके बरसात के सीजन में पत्ते वाले पौधों को, गडबेरी है, फोग है और किक्कर है, इस तरह के पौधों को लगा दीजिए और वो वर्षा ऋतु में ही लगाना चाहिए। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि पौधे अच्छे तब पनपते हैं जब उनको सितंबर में लगाया जाए, क्योंकि उस समय नमी बहुत अच्छी मृदा में हो जाती है और तापमान कम हो जाता है। तो इस तरह से फल वृक्षों और घास को लगा के किसान भाई चारागाह को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जो पुराने चारागाह हैं, और नया चारागाह भी इसी विधि से विकसित कर सकते हैं।
अब डॉक्टर साहब आप बात कर रहा अकाल रे, अकाल रे बगैर चारा और चारागाह रो प्रबंधन किया करे हमारे ऊंट पालक भाई।
हम जी भाई, अकाल इस क्षेत्र का एक तरह से कह लीजिए तो अभिशाप भी है, और हर तीसरे साल यहाँ अकाल थोड़ा बहुत ही पड़ता जरूर है, और उसका सीधा असर हमारे चारागाहों पर पड़ता है, क्योंकि चारागाह में सिंचाई के साधन नहीं होते हैं और वो जो है वो वर्षा के पानी पर निर्भर होता है। अब जैसे घास उगे, अगर घास में बीज तक नहीं आ पाया और बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब ये हो गया अकाल पड़ गया। उससे क्या है कि उत्पादन में बहुत ही कमी हो जाती है। अब उस उत्पादन को अकाल में कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है कि जो भी पानी मिलता है हमें चारागाह क्षेत्र में वर्षा ऋतु में, थोड़ा बहुत भी जो मिलता है उसमें उसको संरक्षित करें, जिसको कहते हैं जहां बूंद गिरे वहीं संरक्षित कर लिया जाए। तो इसके लिए हम लोग एक निकाई गुड़ाई का काम करते हैं। निकाई गुड़ाई में चाहे आप हल्का सा कल्टी चला दीजिए उस क्षेत्र में, उससे क्या है कि ऊपर की पपड़ी टूट जाती है और एक डस्ट मल्च का काम करती है, जो धूल है वो मल्च का काम करती है, तो जमीन का जो पानी है ऊपर नहीं उड़ पाता है। दूसरा, अवांछित वनस्पतियों अगर उग गई हैं तो उनको नष्ट कर दें, उससे जो पानी उपलब्ध है वो हमारी घास और पेड़ों को ही मिलेगा। तीसरा, चराई का प्रबंधन बहुत जरूरी है, उस चराई के प्रबंधन को हमें नियंत्रित करना पड़ेगा। आप चारागाह को 3 से 4 ब्लॉक में बांट दीजिए और एक एक ब्लॉक में चराई करके उस ब्लॉक को थोड़े दिनों के लिए खाली रख छोड़ दिए, कम से कम 1 हफ्ते से लेकर के 15 दिन तक, जिससे कि उसमें जो वनस्पति बची हुई है वो पूरा उग जाए, अन्यथा पानी की कमी से वो सूख। तीसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकाल में चारागाह प्रबंध तो इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन पशुओं के चारे का प्रबंध कैसे करें, क्योंकि चारागाह में तो चारा कम हो गया है, बाहर भी चारा नहीं है, तो उसके लिए 2-3 पद्धतियां हैं। एक है कि हमें उन पेड़ वृक्षों की जो कि अकाल को सहने की क्षमता रखते हैं, जैसे फोक, दूसरा लाना, दो एक ऐसी वनस्पतियां हैं जो भीषण अकाल में भी पत्तियां पशुओं के लिए उपलब्ध कराती हैं। लाना का फूल जो होता है उसको चुप करके रख लीजिए, और जैसा कि मैंने फोक को बताया, फोक का जो लाशू है, आप कभी भी देखिए फोक के नीचे पत्तियां गिरी रहती हैं गहरे रंग की, वो उसकी पत्तियां हैं। अगर उसको हम इकट्ठा कर ले, उसमें प्रोटीन होती है, तो कम से कम अकाल के दिनों में हम पशुओं का पेट भर सकते हैं। पूरे पोषक तत्व ऊंटों को या पशुओं को नहीं मिल पाते, लेकिन वो पशुओं का पेट भरने में कामयाब होते हैं और थोड़ा बहुत भी हम तत्व दे करके हम उनको पाल सकते हैं। इस तरह से हम इन पौधों से पत्तियों को इकट्ठा करके पशुओं का पालन कर सकते हैं अकाल के क्षेत्र।
और डॉक्टर साहब देखो, अब आप बात करा कि जो आप पूरी बात बताई कि भाई बेहतर चारागाह विकास किया करा, घास किया लगावा, और मैंने किन किन बातारो ध्यान रखा, पर बात करा आप रे केंद्र री, तो चारागाह विकास और घास उत्पादन ने बढ़ावा देवन सर आप रो केंद्र और कई प्रयास करें ऊंट पाल का सर।
गौरवैन, हमारा क्षेत्र जो है अनुसंधान केंद्र 1952 से चल रहा है और 1952 से आज तक केवल 2 ही काम करता आ रहा है, 2 ही पर रिसर्च कर रहा है ये, और वो है चारागाह का क्षेत्र में विकास कैसे किया जाए और चारागाह में चारा को कैसे उगाया जाए और उस चारे में सेवन और धामन घास का उत्पादन की क्या तकनीक होनी चाहिए, उस पे कैसे अनुसंधान जो भी हो रहे हैं वो इन्हीं घासों पे हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी पूरी तकनीक हम लोगों ने विकसित करके किसानों को हम प्रशिक्षण देते हैं, आत्मा योजना है उसके तहत किसान आते हैं, हम उनको घास लगाने कैसे लगाया जाए घास को उसका प्रशिक्षण देते हैं। दूसरा, धौरे जो है उस पर घास कैसे लगाई जाए, जहां पर किसान कोई उपयोग नहीं कर पाता तो उस पर घास कैसे लगाई जाए, कौन कौन से पौधे लगाए जाए, इस पर भी हमारा केंद्र अनुसंधान करता है और चारागाह विकास के लिए तो समर्पित ही है। हमारे बीकानेर क्षेत्र के पास एक नथानिया ओरण है,
हाँ है बिल्कुल सर,
और 1993 से लेकर के 1997 तक हमने उस ओरण को देखा, तो वो गायों के चरने के लिए ओरण था, लेकिन जब हमने उसका सर्वे किया और 40 बीघे में नथानिया ओरण में हमने सेवन घास लगा करके बताया, और 40 बीघे में जब वो घास लग गई तो विश्वास हो गया कि सेवन घास अपने आप नहीं उगती, इसको लगाया जा सकता है। इसका सबका प्रशिक्षण दिया और आज आप देख सकते हैं कि नथानिया का पूरा गोचर सेवन घास से भरा हुआ है और उसमें 5 से 6 हजार गायें आपको चरती हुई मिल जाएंगी। ये एक ज्वलंत उदाहरण है और कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ किसान भाइयों से, ऊंट पालकों से भी, कि आप देखिए आकर के इस नथानिया को, मतलब गोचर भूमि को, कि किस तरह से ये विकसित हो गया। दूसरा एक बात और हम बताना चाहते हैं, कि एक किसान है उसके पास केवल ऊंट नहीं होता, उसके पास बकरी होती है, गाय होता है, भेड़ होती है और ऊंट भी होता है।
बिल्कुल सर।
और उसके पास जमीन अगर कम है तो वो क्या करे? हमारे पास ऐसे बहुत किसान भाई आते हैं, उनको हमारे संस्थान ने तकनीकी निकाली है जिसको सीढ़ी नुमा खेती बोल सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सतह पर तो सेवन और धामन की घास लगवा देते हैं, इसके बाद झरवेरी लगाते हैं जो कि झाड़ी होती है, तो उससे थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर होती है तो बकरियां उसको खा जाती हैं।
ठीक है।
और इसके बाद हम बड़े पेड़ लगाते हैं, जैसे टाटिस हुआ और पत्तेदार पेड़ हुए, इस तरह के पेड़ हम जब लगा देते हैं तो ऊंट के लिए वो सबसे बेहतर होता है। तो इस तरह से तीनों जानवर एक साथ एक ही चारागाह में किसान के यहाँ जो है पलते रहते हैं और उनकी भोजन की समस्या दूर होती है।
इस तकनीक का विकास हुआ प्रदेश रमाई ने?
हाँ, इस तकनीकी का विकास कुछ किसानों ने तो अपनाया है, खासतौर से बारानी क्षेत्र के किसानों ने, जहाँ की पानी की सुविधा नहीं है और जो पशुओं पर ही आधारित है जिनकी जो अर्थव्यवस्था, लेकिन सिंचित क्षेत्र के किसानों जहाँ पर बहुत आसानी से हो सकता है, उन्होंने अभी कम रुचि अपनाई है क्योंकि उनका सिंचित कृषि के प्रति ज्यादा रुचि। लेकिन उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर उनके पास, क्योंकि टिब्बा कि जमीन सबके पास होती है, चाहे वो सिंचित हो या असिंचित, तो अगर वो अपने टिब्बे पर इस तरह की तकनीक अपनाएं तो टिब्बा भी संरक्षित रहेगा, मिट्टी नहीं उड़ेगी और इन पशुओं को चारा भी भरपूर मिलता रहेगा।
और देखो बोमजी भाई, डॉक्टर साहब तो घनकरी जानकारियां दे दी, ऊंट पालका ने अपील भी कर दी, पर देखो मैं यार उनियारो देख एक मने लागे के मारसू भी किन की अपील करनी चाहे है।
तो मने पर भी देखो लाग रही है।
आज अपील मैं यहाँ भी करूला के पखाल रे मायने यहाँ रे दिमाग रे मायने जितो ज्ञान है नहीं उतो तो नहीं, पर पखाल पूरी भर लायू गीताऊ और आज यानी दायरो गीत, क्योंकि यहाँ जिको जानकारियां है, ज्ञान है, मने लागे है कि एक गीत संगीत सुनने यानी वगत मिले है कि नहीं मिले है, पर आज अब उठारी बाता में आ गया है तो थोड़ी तो विषय यहाँ ज्ञान दिमाग ने दिलाई देवा और सुनावा यहाँ दायरो गीत, तो यहाँ नहीं पूछा कि यहाँ किसो गीत गाये।
डॉक्टर साहब आप किसो गीत रोलो सुनो चाहो मारे गौरव बहनी पखाल मो
भूम जी भाई, फिल्म तो आप बता दीजिएगा, पन्ना की तमन्ना एक गीत है कोई,
हीरा पन्ना फिल्म
का,
और किशोर कुमार का वो गीत लो है।
हाँ, आप सुना दीजिए।
ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल
तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल,
सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
तो सर खबर अब देखो डॉक्टर एनडी यादव साहब बेहतर चारा का विकास और घास उत्पादन विषय पर मैंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अब देखो है कागदिया आवड़ा डिगलो एक
डिगलो है डिगलो पीड़ो कर और चला शरद चंद्र जी मेहता साहब कने बरकन तो देखो जाओ पड़ी है
तो चला
अरे मैं तो उठोड़ी चलो चलो आयो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। देखो अबे आप चौकी तरीके ओळखण लाग गया अबे अठे पुगण में कोई फोड़ो कोनी वे डॉक्टर साहब रो कमरो ओळखण लाग गया पण मैं आडो तो खोलो
खोलो भाई थोड़ो सांस तो ले लो पगा थे चढ़ते चढ़ते मारे तो घुटने दुखण लाग गया। राम राम डॉक्टर शरदचंद्र मेहता साहब।
राम राम सर। राम राम।
राम राम मोम जी भाई। राम राम गवरा बहन।
डॉक्टर साहब देखो कागदारो डिगलो लेर में तो थाने कने फिर हाजिर हो गया उथला लेवण ने।
बिल्कुल बिल्कुल।
थाने भगत हुए तो देखो कागद बाचना चालू कर दूं क्योंकि भगत री तो देखो आपण कने सी मारे वे।
पढ़ो।
देखो डॉक्टर साहब ओ कागद आयो है श्री हीरा लाल रेबारी रो जगतरी डाणी उदयपुर सु और एक कागद है श्री गणेश रेबारी रो भेंसड़ा खुर्द उदयपुर सु। देखो ए हीरा लाल जी तो लिखे है कि यारो सांड है और गणेश जी लिखे है कि यारे ऊंट है और दो यारी समस्या एक है एंड सरु है मैं दो ही कागद भेड़ा कर लिया कि यारे सांड और ऊंट रे पेशाब रे माने खून आवे है डॉक्टर साहब ने दिखा दियो पर ठीक कोनी हो रही है तो कोई उपाय बताओ आप याने।
देखो सर इन दोनों का जो ऊंट है और एक जगह सांड है दोनों में पेशाब में खून आ रहा है। पेशाब में खून आने के कई सारे कारण होते हैं। एक तो जैसे बुखार नहीं होना चाहिए, अगर बुखार होता है तो हम दूसरी दिशा में जाते हैं। दूसरा ये कि पेशाब नियमित है या नहीं है या पेशाब करते वक्त कोई दर्द है या नहीं है। तीसरा ये कि अगर मादा है तो बच्चादानी में किसी और कारण से कोई दिक्कत नहीं हो। और चौथा ये कि अगर वो ऊंट है तो पेशाब करने वाली जगह कोई सूजन तो नहीं है। मैंने देखा कि ये एक कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशो बॉडी में होना चाहिए वो गड़बड़ाने से हुआ है जिसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें दो तीन तरीके से काम करना पड़ेगा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमें एक तो फास्फोरस का इंजेक्शन आईवी देते हैं तो ये डॉक्टर साहब जो हैं इनके जो जिनसे संपर्क में हैं उनसे निवेदन है कि वो फास्फोरस का इंजेक्शन आईवी लगाए उसके साथ साथ उसका ब्लड ले लें और सीरम की जांच उदयपुर में जो केंद्र है अपना डॉक्टर भूपेंद्र भारद्वाज से उसमें सीरम में कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो देखे उसके बाद अपन और इसमें ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और सलाह है इनको कि ये देने के साथ साथ चूंकि खून आ रहा है तो खून अपने को रोकना भी है उसको और उसके लिए जो है इनको ट्राइनेक्समिक एसिड का इंजेक्शन आता है और अगर वो नहीं मिले तो एन ब्यूटाइल एल्कोहल साइट्रिक एसिड और सोडियम क्लोराइड इसका एक कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन आता है जो भी इनके वहाँ उपलब्ध हो ये ऊँटों में उसको लगवाए।
अच्छा डॉक्टर साहब कोई देसी इलाज भी है क्या ये रोग रो?
हाँ इसमें इसको मैंने यहाँ पशु चिकित्सा महाविद्यालय में भी डॉक्टर तंवर साहब से डिस्कस किया और उन्होंने ये कहा कि ये जांच रिपोर्ट आए और ये इंजेक्शन वगैरह लगे हैं जब तक कुछ देसी चीजें जैसे अपना केला होता है तो केला भी इसमें कई बार बहुत अच्छा काम करता है और तो कम से कम ऊँट को 10 केले सुबह शाम खिलाए 3 दिन तक। उसके साथ जो अपने पूजा में कपूर की गोली होती है
हाँ,
तो दो दो गोली उसको दे ऊँट को 3 दिन तक तो
उससे भी कोई में मिला
नहीं रोटी में रख के कैसे भी आप दे दोगे ऊँट में बहुत छोटी गोली होती है तो और बड़े आराम से ले लेगा वो और इनसे भी कई बार जो है उसमें राहत मिली है। और अगर उनके आसपास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो एक बहुत सस्ती दवाई आती है वो होम्योपैथी से भी कई बार जो ये खून रुक जाता है जब तक अपनी कैल्शियम और फास्फोरस की रिपोर्ट आए और अपन आगे उसमें और काम कर सकते हैं।
और गौरा बहनो दूजो खाके जे बात सुन तो सही पण के नाम मिलो की समझ में कोनी आ रही है समस्या थे को तुम बोल दूं।
जरूर बोलो क्योंकि थे जगह रो नाम बोलो नी हाँ। जी के भाई कागज लिखियो है नी हाँ। खुद ने तो ठा पड़ी जाए के कागज मारो ही जाए हाँ। और आगे हूं वे आपरा आखर जी को है साफ साफ लिखी।
और देखो आए तो डॉक्टर साहब दूदू जयपुर से हैं और लिखे के ऊंट चरे कोनी और सुस्त रहे हूं कहीं करूं।
बिल्कुल सर इनको अगर इन्होंने नियमित टीकाकरण और बाकी सब काम किया है तो आज की स्थिति में और ये जो समय है जब सर्दी का आगमन हो रहा है तो इसमें कई बार जो है हमें निमोनिया और इस तरह की जो चीजें हैं सर्दी खांसी वाली भी बढ़ जाती है तो इनको मेरी सलाह है कि स्थानीय पशु चिकित्सक को तो दिखाए दिखाए और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और उसके साथ साथ अगर बुखार है तो बुखार उतारने का एंटीबायोटिक इंजेक्शन और साथ में बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन ले तो इनके ऊँट को आराम मिल जाएगा।
हाँ, अगलो कागज की रो है
देखो बोम जी भाई दो कागज मारकन है जिको थाने सुनर डॉक्टर साहब ने तो इसरज हुए के नहीं हुए थाने और मन ने तो जरूर मन तो बाजते ही हो रही है कि एक है डॉक्टर साहब हेतु दान जी फड़ोदी जोधपुर से, एक है डॉक्टर श्रवण सिंह जी आसपुरा डूंगरपुर से। हमें डॉक्टर साहब अठे कागज लिखी है तो कोई न कोई तो बात है ही है। और यारी बात रो एक और कागज आयो है श्री शंकर रेबारी जगत रिडाणी उदयपुर से, ये लिखे है कि इलाज रे बावजूद ऊंठा रे मायने खुजली ठीक कोनी हो रही। तो हमें यह तीनारी समस्या है, दो तो डॉक्टर साहब है इलाज कर रहा है और शंकर रेबारी जी है जिको आप ऊँटो इलाज कर रहे हो, यहाँ सुपार कुन पड़े है जने वे डॉक्टर शरदचंद्र जी मेहता साहब को उपाय पूछनी चाहिए।
देखो सर, इन दोनों डॉक्टर साहब ने आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन आता है वो लगाया जो खुजली में सामान्यतः हम लगाते हैं, आजकल केवल उस इंजेक्शन से ये ठीक नहीं हो रही है और इसके साथ साथ फंगस का भी इन्फेक्शन है। तो हमारे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र ने जो एक इसका फॉर्मूला बनाया है उसके तहत ये करे कि 10% सोडियम थायोसल्फेट के घोल से पहले उसको घाव को धोए। और अगर किसी स्थिति में, कई लोग ये कहते हैं कि हम सोडियम थायोसल्फेट कहाँ से लाएं, ऐसी स्थिति है तो वो सामान्य साबुन से भी एक बार उसको घाव को साफ कर ले। उसके बाद 6% सल्फर पाउडर और 3% सैलिसिलिक एसिड सरसों के तेल में घोले और हर दूसरे दिन लगाए। ये इतना कारगर उपाय है कि इसमें कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन 14 दिन में ये ऊंट ठीक होने लग जाते हैं,
खुजली
ठीक होने लग जाती है। और कोई जानवर जिसमें बहुत ज्यादा अगर ये फैली हुई है तो उसको ड्यूरामेक्टिन का इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि ये आइवरमेक्टिन पहले लगा चुके हैं तो ड्यूरामेक्टिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये करीब करीब एक तो इसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, एक महीने में एक बार लगाना पड़ता है और इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है। साथ में अगर जानवर कमजोर है तो उसको जो भी विटामिन या फ्रूट थेरेपी की जरूरत है वो इसको दे, काफी आराम पाएंगे।
गौरा बहन, एक सबसे बड़ी बात है कि पत्र अपर अठनी डॉक्टर साहब घने भी है, डॉक्टर साहब से सीधी बात भी करे भी है, सो राय भी ले।
कोई भी समस्या है तो कागज लिखो। तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र रा जितना भी वैज्ञानिक पावना है नी वे इन्हीं प्रयास में लागोड़ा है कि ऊंट पालका ने किणी बात रो फोड़ो नहीं वे। और देखो फोड़ो तो जद भी होया करे जद की आपा भगत रे साथ नहीं चला, तो भगत रो ध्यान तो आपा ने राखनो पड़ी, कागदिया भेड़ा करना पड़ी और शरद चंद्र जी ने धन्यवाद देर सीख भी लेवनी पड़ेला।
तो डॉक्टर शरदचंद्र मेहता साहब आ मारे कागदार उथलो दियो, इन सारो मैं आपने करा धन्यवाद और आपने मैं करा
राम राम साहब। पण बोम जी भाई, डॉक्टर साहब को सीख ले ली, डॉक्टर एनडी यादव साहब ने भी धन्यवाद दे दियो, पण तो ही हाल एक काम तो बाकी रह गयो, ठिकानो तो बताणो पड़ी के नहीं।
तो लिखो ठिकानो लिखो सा, ऊंटारी बाता कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर। अब आपा लेवा ऊंट पालक बयासु आज्ञा और करा
राम राम सा।
तो सा आथी आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बाता, संयोजक श्री श्याम पवार, प्रस्तुति श्री मिलिंद पांडे, सहभागिता थी श्रीमती प्रभा थानवी और राम सहाय हर्षरी, और अबे राम राम सा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
ऊंटारी बातें आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ एक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊंटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
बाता आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।